हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे सातवें दिन की कथा में। आशा करते हैं कि कथा को हम समाप्त न करके हमारे जीवन में भागवत को आविर्भूत करें और निरंतर भगवान का श्रवण और कीर्तन हमारे जीवन में जारी रहे। क्या आप चाहेंगे? तो कल हमने भगवान की एक बहुत ही सुमधुर लीला, उसकी हमने चर्चा की। दाम बंधन जिसे कहते हैं, दामोदर लीला। इस लीला में भगवान ने अपने आप को अपने भृत्य के वश कर दिखाया और सुखदेव गोस्वामी बहुत ही रस लेकर ये दामोदर लीला परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि यही वो एक लीला है जिसमें भगवान ने अपने आप को अपने भक्त का कैदी माना। एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्यवश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे। भगवान ने सभी देवताओं को दिखाते हुए कहा, एवं संदर्शित, सम्यक दर्शन करो तुम सब। किसका? तुम्हारे ईश्वर का। तुम लोग जो सब ईश्वर हो और तुम्हारा मैं ईश्वर, मेरा दर्शन करो। और किस स्थिति में? मैं जो इस उखल से बंधा हुआ। तो वो भगवान जो मुक्ताय है, गजेंद्र ने भगवान के विषय में कहा है, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय, कि वो भगवान जो कि परम मुक्त हैं, तो मुक्ताय हो गए हैं बद्धाय। और जो मुकुंद हैं वो अपने आप की मुक्ति नहीं करा पा रहे। तो हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे को कल नहीं कहे थे, जो हम आज कहने वाले हैं, कि जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो माता यशोदा ने अपने घर की सारी रस्सियां ले आई। वो यहां तक कि ब्रज मंडल में सारे ब्रजवासियों के घरों में जितनी सारी रस्सियां थी, सारी रस्सियां आ गई। मानो रस्सियों का ही एक उत्सव हो गया। परंतु फिर भी भगवान श्री दामोदर अब तक बंध नहीं पा रहे थे। और कितनी रस्सी कम पड़ रही थी? केवल दो उंगल, दो अंगुली रस्सी कम पड़ रही थी। तो माता यशोदा जो कि वात्सल्य रस में है, वो प्रयास कर रही थी, प्रयास कर रही थी, अथक प्रयास कर रही थी। माता यशोदा वो पसीना पसीना हो रही थी, सांस भर आई थी। अरे क्यों नहीं, इतना भागी थी इसे पकड़ने के लिए सबसे पहले। और सुबह से माता यशोदा किसमें लगी हुई थी? यानी यानी हगीतानी तद्बाल चरितानि च, लगी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनके कीर्तन में, उनके स्मरण में। तो माता यशोदा थक गई थी, परंतु हार नहीं मानी माता यशोदा ने। और उस समय माता यशोदा जब सोच रही थी कि क्या हो रहा है, ये कैसा आश्चर्य मैं देख रही हूं, अहो आश्चर्य, कैसा आश्चर्य है, ये वही मेरा कन्हैया, छोटा सा, उतना ही है, उसकी कमर भी उतनी सी और इतनी सारी रस्सी, फिर भी ये बंद क्यों नहीं रहा। तो उस समय एक बहुत ही विशेष भक्त भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित हुए, श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य रस में है, माता यशोदा वात्सल्य रस में, श्रीमती राधा रानी माधुर्य रस में। तो दोनों में कौन सा रस ऊंचा है? माधुर्य रस ऊंचा। तो श्रीमती राधा रानी वहां पर पहुंची और श्रीमती राधा रानी स्थिति का मुआयना कर रही है। इतनी सारी रस्सियां, माता यशोदा पसीने पसीने थके हारे और भगवान बंद नहीं रहे। तो एक स्त्री को दूसरे स्त्री के प्रति ज्यादा सहानुभूति होती है। तो श्रीमती राधा रानी, उन्होंने देखा कि चलो मैं अपना एक प्रयास माता यशोदा के सामने प्रस्तुत करती हूं। तो जब श्रीमती राधा रानी कुछ प्रयास करती है भगवान से कुछ कराने के लिए, तो भगवान श्रीमती राधा रानी के सामने कुछ नहीं कर सकते। चाहे और कोई भी आ जाए, परंतु श्रीमती राधा रानी जब कुछ अभिप्राय प्रयोजन सिद्ध करना चाहती है, तो भगवान श्रीमती राधा रानी के सामने उनकी कुछ नहीं चलती। इसलिए कहा गया है, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है,
श्री राधे गोविंदा
सब बोलिए
भजले हरि का प्यारा नाम है,
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है,
गोपाला हरि का प्यारा नाम है,
नंदलाला हरि का प्यारा नाम है,
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है।
जय नंदलाला जय गोपाला,
जय नंदलाला जय गोपाला,
जय नंदलाला जय गोपाला,
जय नंदलाला जय जय गोपाला,
जय नंदलाला, जय जय श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है।
श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है।
राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन के आगे आगे कान्हा भागे आए, ओहो कान्हा भागे आए। राधा रानी, इनकी शक्ति के बिना, इनकी कृपा के बिना कोई भगवान श्री श्याम उनका दर्शन भी नहीं पा सकता। तो श्रीमती राधा रानी वो जब देखती हैं कि भगवान बंद नहीं रहे, तो श्रीमती राधा रानी ने अब अपने केश बंद को निकाला, अपने केशों को बांधे हुए जो फीता था उनका, उस फीते को श्रीमती राधा रानी ने निकाला और वो यशोदा माई को दिया। और जब यशोदा माई ने श्रीमती राधा रानी के केश बंद को उन सब रस्सियों से बांधा, तब जाकर भगवान बंधे। इसलिए इस दृष्टांत के पश्चात उनका नाम न केवल दामोदर रहा बल्कि राधा दामोदर, कि वो दामोदर जो अंततः बंधे श्रीमती राधा रानी के प्रेम बंधन में। तो भगवान जो सबको मुक्ति दिलाने वाले हैं, वो भगवान स्वयं की मुक्ति नहीं कर पाए, तो इसलिए भगवान अपनी इस लीला से हम सभी को सिखा रहे हैं कि यदि हमें इन भगवान को अपने हृदयों में बांधना है तो एकमात्र तरीका है अनन्य भक्ति। तो भगवान जो कि सबको अपना सब कुछ ऐश्वर्य दे रहे हैं, परंतु भगवान अपने आप को केवल अपने भक्त को ही देते हैं। इसलिए भक्त वो बहुत चतुर होते हैं, वो भगवान का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहते। जय कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, जो कृष्ण को भजता है वो बहुत बड़ा चतुर है। और कल हमने चर्चा की, जे कृष्ण त्यजे से बड़ो कुकुर, जो उन भगवान को त्याग देता है उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान है जो गली का भी नहीं कहला सकता। तो भगवान अपनी लीलाओं से, मनोहर लीलाओं से ब्रजवासियों का मन हर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज को डुबा रहे हैं। परीक्षित महाराज गोते खा रहे हैं, किसमें? कृष्ण कथामृत में। क्या हमें महसूस हो रहा है कि हम गोते खा रहे हैं? केवल कई बार अनुभव होता है हम डुबकी खाते हैं, और इसके विषय में कहा गया है कि साधारणतः इतनी नींद नहीं आती, परंतु जैसे ही कथा में कोई व्यक्ति अपने आप को बिठा देता है तो पता नहीं ये निद्रा देवी कहां से बिन बुलाए बिना न्योता दिए ये निद्रा देवी भागते हुए संग करने चली आती है। इसलिए एक सुभाषित में कहा गया है, निद्रा हते प्रेयसी कुंभकर्णी वैधव्य दीक्षाम व्यतीते तथा किम श्रोत्रिम कथा याति कथा पुराणाम न ग्राम्य गीतम विविधैव च गीतम। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि जब प्रभु राम ने कुंभकर्ण, सभी जानते हैं कुंभकर्ण को अच्छी से, जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी वो हो गई विधवा। कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? निद्रा देवी। कुंभकर्ण ने बहुत अच्छी से निद्रा देवी के साथ विवाह किया था, बिल्कुल तलाक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं उसके साथ। तो इसलिए निद्रा हते प्रेयसी कुंभकर्णे, कुंभकर्ण की प्रेयसी थी निद्रा देवी, और जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निद्रा देवी हो गई वैधव्य विधवा। तो निद्रा देवी घूम रही थी किसी पति को ढूंढते हुए। तो सबसे पहले वो गई उस स्थान पर जहां पर पुरुष एकत्रित होकर ग्राम्य कथा कर रहे थे। ग्राम्य कथा किसे कहते हैं? फिजूल की बातें। किसे? फिजूल की बातें या प्रजल्प। तो जहां पर ग्राम्य कथा या फिजूल की बातें हो रही थी, निद्रा देवी वहां गई किसी वर को ढूंढते हुए। तो वहां पर उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया निद्रा देवी को, भागो, कोई विवाह नहीं करेगा यहां पर तुमसे। क्योंकि जब कोई ग्राम्य कथा में लगा रहता है तो निद्रा देवी इर्द गिर्द भी नहीं फटकती वहां। तो निद्रा देवी ने देखा कि यहां पर एक इंद्रप्रस्थ हॉल है और इस इंद्रप्रस्थ हॉल में कितने सारे पुरुष एकत्रित हुए हैं, तो कोई एक तो होगा जो मेरे लिए बना होगा। तो जैसे ही निद्रा देवी प्रवेश किया उसने, तो निद्रा देवी का स्वागत किया गया हरि बोल माला वालगर डालकर। श्रोत्रिम कथा याति कथा पुराणाम। तो इसलिए परीक्षित महाराज तो खैर वो कृष्ण कथामृत में गोते खा रहे थे, तो हमें भी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि एक दिन हम भी उस स्तर तक पहुंच पाए कि डुल्की के बजाय हम भी भगवान श्री कृष्ण की कथामृत में गोते खाना प्रारंभ करें। तो आज का दिन बहुत विशेष है, सातवां दिन। आज हम भगवान की श्री गोवर्धन लीला, हालांकि ये गोवर्धन लीला यदि हम सुनाना प्रारंभ करें तो और 7 दिन आना पड़ेगा। क्या इरादा है? निद्रा देवी से पूछ लो पहले। तो हम संक्षिप्त रूप में गोवर्धन लीला लेंगे आज, क्योंकि आज एक और विशेष महोत्सव है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी जो अपने स्थान को छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं आज। क्यों? क्योंकि आज एक बहुत विशेष महोत्सव वो हमारे लिए कराना चाहते हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ का पुष्प अभिषेक, जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा अपनी इन आंखों से। तो आप अपने आप को थाम के रखिए, आपके दिल को थाम के रखिए, आंखों को थाम के रखिए, अंत तक यदि आपको ये भव्य पुष्प अभिषेक श्री राधा गोपीनाथ जी का देखना है। तो भगवान ने ये जो गोवर्धन धारण लीला की, इसके पीछे भी भगवान के बहुत से प्रयोजन थे। जैसे कि हमने कहा कि भगवान बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं करते थे। अरे यहां तक कि भगवान जब अपनी आंखें बंद करते हैं, निमीलिते क्षण, उसके पीछे कितने सारे प्रयोजन थे भगवान के। जब पूतना आई तो भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने मटका क्यों फोड़ा? भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं? सबके पीछे कारण है। हालांकि सर्व कारण कारणम वही है। तो गोवर्धन लीला ये भगवान ने क्यों की, इसके कितने कारण हैं? सात कारण आपके सामने। सबसे पहले भगवान श्री गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करना चाहते थे। और श्री गोवर्धन है कौन? श्री गोवर्धन एक पर्वत के रूप में भगवान के बहुत बड़े दास हैं, हरिदास वर्य। आप में से कितनों ने श्री गोवर्धन धाम का दर्शन किया है? हाथ उठाइए। और आप में से कितनों ने श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा की है? तो जितनों ने हाथ नहीं उठाया, अगली बार जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सबको हाथ उठाना होगा। क्योंकि यदि हमने श्री गोवर्धन जी का दर्शन नहीं किया है इस मनुष्य जीवन में, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्री गोवर्धन जी को हरिदास वर्य कहा गया है, हरि के दासों में सर्वोपरि, हरिदास वर्य। तो भगवान हम सबके उद्धार हेतु श्री गोवर्धन पूजा इसका उद्घाटन करना चाहते थे। तो भगवान ने श्री गोवर्धन धारण लीला की, ये सबसे पहला कारण। भगवान श्री गोवर्धन का यश, उसका वर्धन करना चाहते थे। गोवर्धन का अर्थ है, जैसे कि हमने ये सुना कि गो ये शब्द का अर्थ क्या है? गौवें। गो का अर्थ है गौवें, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है हमारी इंद्रियां। तो गोवर्धन वो हैं जो गौओं को आनंद देने के लिए वो अपने अस्तित्व को रखे हैं, और जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, आध्यात्मिक इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो हैं श्री गोवर्धन। तो जो हमारी संतुष्टि का वर्धन करते हैं वो हैं गोवर्धन। परंतु भगवान उन गोवर्धन के यश का वर्धन करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने श्री गोवर्धन धारण की लीला की। ये दूसरा कारण। भगवान इंद्रदेव को सबक सिखाना चाहते थे। क्यों इंद्रदेव को सबक सिखाना चाहते थे? क्योंकि इतना मान सम्मान इंद्र को मिल चुका था, क्योंकि सभी देवताओं के इंद्र महेंद्र वो इतना मान सम्मान मिला हुआ, तो जब ज्यादा मान सम्मान मिल जाता है तो नशा आता है, है कि नहीं? जब ज्यादा प्रशंसा होती है, गुणगान होता है, तो अहंकार वो फूलता है और वो हमारे सर में नशे का काम करता है फिर। इसलिए ये जो अहंकार है हमारे सबके अंदर, ये जो अहंकार है इसकी तुलना शहद से की गई है, मधु से। मधुक्लिबम च माधवी के सूदनम मधुसूदनम, कि जब कोई शहद पीता है तो बहुत मीठा लगता है ना, मधु शहद जब कोई व्यक्ति पीता है तो बहुत मधुर लगता है जब कोई व्यक्ति शहद पीता है। परंतु ज्यादा मात्रा में यदि कोई शहद पी ले तो वो शहद फिर नशा देता है, वही शहद फिर मधुरता के बजाय नशीला बन जाता है। तो ये जो मान सम्मान लेने की ये जो आदत बद्ध जीव को है, अहंकार को फुलाने की जो आदत है बद्ध जीव को, वो उस शहद का पान करने के समान है। और जब इसका पान इतना हो जाता है तो नशा आता है। तो संस्कृत में शहद को कहते हैं मधु, और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। सूदन का अर्थ है खत्म करना, प्रणश्यति। तो भगवान ने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान को ये नाम मिला मधुसूदन। तो यहां पर कहा गया है कि यदि ये अहंकार जिसकी वृद्धि होती है मान सम्मान मिलने से, अहंकार का अर्थ क्या है, अहम करोति इति अहंकार, कि मैंने ये किया, मैंने ये घर बांधा, ये मेरी धन दौलत, ये मेरा ऐश्वर्य, मेरा परिवार, मेरा देह। एक साधु महात्मा वो वन में तपस्या के लिए गए और उनका प्रयोजन था कि तपस्या के अंत में जब भगवान दर्शन देंगे तो उनके पास एक लंबा चौड़ा लिस्ट था क्या क्या वो मांगेंगे भगवान से। तो तपस्या में वो लग गए, कठोर तपस्या कर रहे थे और कुछ समय पश्चात जब भगवान अवतरित हुए, इन तपस्वी को अपना वरदान देने के लिए, तो तुरंत अपना लिस्ट इन्होंने बाहर निकाला, जो जो ये चाहते थे भगवान से मांगना। तो जैसे ही अब ये मांगने जाने वाले थे तो सूर्य देव वहां पर प्रकट हो गए और सूर्य देव इन्होंने कहा, भगवान यदि आप इस तपस्वी को कुछ देना चाहते हो तो उसका कुछ प्रतिशत मुझे भी मिलना चाहिए, कमीशन। तो साधु महात्मा, अरे भाई क्यों, मैंने तपस्या की भाई, तुम्हें क्यों कमीशन मिलना चाहिए। तो सूर्यदेव कहते हैं, भाई किसकी रोशनी ने तुम्हें जिलाया इतने समय तक, किसकी रोशनी ले लेकर तुम अपने आप की तपस्या सफल कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, सही कह रहे हैं भाई, सूर्य की रोशनी में ही तो तुमने तपस्या की, जो भी ऊर्जा तुमने अर्जित की वो सब सूर्य की रोशनी से। तो साधु महात्मा कहते हैं, ठीक है कुछ प्रतिशत दे दो, ठीक है ले लो, चलो। तो सूर्यदेव चले गए। तब फिर तैयार हुए ये मांगने के लिए जो कुछ मांगना था, तो वायुदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु यदि इन्हें कुछ दे रहे हो तो उसका कुछ प्रतिशत मुझे भी, तुम्हें क्यों भैया? अरे भाई, ये तुमने जो इतना प्राणायाम किया, अंदर बाहर सांस को किया, कौन सी वायु अंदर बाहर की तुमने? ये जो तुम्हारे अंदर प्राण वायु है ये कहां से है? कुछ प्रतिशत मुझे भी मिलना चाहिए। तो वायुदेव अपना कमीशन लेकर चले गए। तत्पश्चात वरुण देव आ गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरा पानी पी पी कर तो जी रहे थे अपनी तपस्या में, तो वो अपना कमीशन लेकर चले गए। वो जिस पेड़ के नीचे तपस्या किया करता था वो मूर्तिमान पेड़ आ गया, मैंने तुम्हें छाया दी, फल दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया, मेरा कुछ कमीशन? वो पेड़ ले गया। इस प्रकार से सभी अलग अलग प्रकार के एजेंसीज आ गए और उन्होंने अपना अपना कमीशन लेकर वो चले गए। तो भगवान ने इन तपस्वी महाशय से पूछा, भाई तपस्या तुमने की है क्या? किसने की है तपस्या? तो साधु महात्मा वो समझ गया, भगवान मैं सोच रहा था कि मैं करता हूं, मैं ये तपस्या कर रहा हूं, परंतु अब समझ में आया कि मैं तो निर्भर था इन सब के ऊपर। तो इसलिए ये जो अहंकार है अंदर, इसको बढ़ावा मिलता है जब मान सम्मान बहुत मिल जाता है किसी को, तो वो शहद पीने के समान है, मधु पीने के समान है। और यदि हमें उसे कम करना है तो हमें शरण ग्रहण करनी होगी। मधुसूदनम इन भगवान की शरण। तो भगवान ने इंद्र को सबक सिखाने हेतु, इसलिए तो हम क्या गए थे, एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नख ऊपर गोवर्धन धार्यो, एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। एक दिन मन इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। अरे नाम पढ़ो गिरधारी राधे, श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी राधे,
सब बोलिए
श्याम श्याम श्याम।
बोलो नाम पढ़ो गिरधारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
नाम पढ़ो गिरधारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
जय केशव कलिमलहारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
केशव कलिमलहारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम श्याम।
राधे श्याम श्याम
श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम।
एक दिन मान इंद्र को मार्यो, नख ऊपर गोवर्धन धार्यो। नाम पढ़ो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ये एक कारण था इंद्र को सबक सिखाने हेतु। चौथा कारण, सभी ब्रजवासियों के साथ निरंतर 7 दिन भगवान लीला करना चाहते थे। अब तक भगवान ब्रजवासी गण जो अलग अलग रस में स्थित थे, कोई दास्य रस में, कोई सख्य रस में, कोई वात्सल्य रस में, कोई माधुरी रस में, भगवान चाहते थे कि सभी रस के मेरे भक्त एकत्रित आए और एक साथ मैं सभी ब्रजवासी गण के साथ लीला करूं निरंतर रूप से। तो भगवान निरंतर रूप से लीला करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया और गोवर्धन के नीचे सभी ब्रजवासियों को आश्रय दिया और उनके साथ लीलाएं की 7 दिन 7 रात निरंतर। ब्रजवासियों का दृढ़, उनकी दृढ़ श्रद्धा, उसका एक नमूना, एक छोटा सा नमूना भगवान हम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते थे कि ये ब्रजवासी, इनके अंदर मेरे प्रति कितनी दृढ़ श्रद्धा है। तो हम आज देखेंगे कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है और हमें अनुगमन करना है ब्रजवासियों के पदचिन्हों का, जिन्होंने इस लीला में दिखा दिया, इस लीला में उन्होंने दिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये एक और प्रयोजन था भगवान का। केवल भगवान श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति काफी है। भगवान ने अपने इस गोवर्धन लीला के द्वारा हम सबको सिखा दिया कि और कहीं पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी का द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। अरे जब ऐसे प्रेम पुजारी जो कि हमारा उद्धार करने हेतु स्वयं अपने धाम को छोड़कर इस भौतिक संसार में अवतरित हुए हैं, तो क्यों हम किसी और के पास जाकर द्वार खटखटाएं, अपना घुटना टेके, जब ये हैं हमें पूर्ण आश्रय देने के लिए। तो भगवान ने अपनी गोवर्धन धारण लीला के द्वारा ये हमें सिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति ही काफी है, सब कुछ उसमें समाविष्ट है यदि हम उनकी भक्ति में लग जाएं, अनन्या भक्ति में उनकी हम लग जाएं। तो ये भगवान हमें सिखाना चाहते थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन भगवान का क्या था कि भगवान इस कलयुग के जो तथाकथित भगवान या ढोंगी भगवान, इनका पर्दाफाश करना चाहते थे। कैसे कि इतने सारे जो अपने आप को भगवान कहते फिर रहे हैं इस कलयुग में, हमने इसकी चर्चा की, आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो रहा है, मैं इस हफ्ते का भगवान हूं, और क्यों हैं आप, क्योंकि मैं ईंट पर खड़ा हो सकता हूं, चर्चा हमने की थी, मैं वही विट्ठल हूं ईंट पर खड़ा, और इस ईंट को लीजिए, सर पर रखिए, मेरी प्रदक्षिणा कीजिए, पाप का नाश कीजिए, परंतु साथ साथ जेब भी खाली कीजिए। तो यहां पर भगवान दर्शाना चाहते थे कि जो भी अपने आप को भगवान कह रहा है, अरे गोवर्धन पर्वत तो दूर की बात है, उस पर्वत का एक पत्थर भी दूर की बात है, एक छोटी सी ईंट भी दूर की बात है, अरे कंकड़ तो अपने उंगली पर उठाकर दिखाओ, सात दिन सात रात भी दूर की बात है, सात सेकंड तो कंकर को अपनी उंगली पर उठाकर दिखाओ, ये भगवान जो अपने आप को कह रहे हैं। तो भगवान ये जो कलयुग के ढोंगी भगवान घूम रहे हैं, इनको ललकारे अपनी गोवर्धन लीला के द्वारा। तो ये भगवान के कुछ प्रयोजन थे, उनका अभिप्राय क्या था इस गोवर्धन लीला को करने का। इसलिए हमें जब भी हम भगवान की कोई लीला का श्रवण करते हैं तो उसके पीछे जान लेना चाहिए कि भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं। केवल मनोरंजन के रूप में कथा का श्रवण नहीं होना चाहिए। इस भौतिक संसार में लोग लगे हैं दो प्रकार के रंजन। रंजन किसे कहते हैं? आनंद की अनुभूति। एक है देह रंजन। इस देह रंजन में बद्ध जीव लगा हुआ है, इस देह से आनंद ढूंढते हुए, इस देह को आनंद देते हुए। और हम देखते हैं कि चारों तरफ ये पूरा मनुष्य समाज लगा हुआ है देह रंजन में और मनोरंजन। इसलिए तो फिर से हम टीवी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि टीवी में लोग क्या ढूंढ रहे हैं, चलो मनोरंजन के कार्यक्रम देखें, इस मन को रंजन देने के लिए कोई कार्यक्रम देखें। तो मनोरंजन या देह रंजन, इन दो कार्यों में मनुष्य लगा हुआ है और दोनों में असंतुष्टि पा रहा है। अपने देह के रंजन के पीछे भाग रहा है बद्ध जीव, परंतु उसमें भी उसे संतुष्टि नहीं मिल रही। इस देह को हमने अब तक, जब से हम जन्मे हैं तब से अब तक इस देह को हमने कितना रंजन दे दिया है। और क्या है ये देह? ये पंचेंद्रिय, ये पांच इंद्रिय, इसकी चर्चा हमने की थी। हमारी आंखें, ये नाक, जिह्वा, कर्ण और ये त्वक इंद्रिय, स्पर्श। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब बद्ध जीव इन पांचों इंद्रियों के रंजन के पीछे भागता है तो उसकी स्थिति क्या है। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकम प्रमाथि सकथं न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना, पांच प्राणियों का उदाहरण दिया गया है। पांच प्राणियों का उदाहरण हमारी पांच इंद्रियों के संदर्भ में, एक एक इंद्रिय के संदर्भ में एक एक प्राणी का उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि ये एक एक प्राणी जब अपनी एक एक इंद्रिय को संतुष्ट करने जाता है तो उसकी दशा क्या होती है। सबसे पहला प्राणी पतंगा। आजकल ये पतंग शब्द थोड़ा लोग ज्यादा संपर्क में आए हैं, परंतु वो पतंग नहीं जो कि ये लोग उड़ा रहे हैं और उसमें आनंद लेते हैं। पतंगा किसे कहते हैं? पतंगा एक कीड़ा होता है जो कि वो अग्नि से बहुत प्रभावित रहता है। बारिश के मौसम में ज्यादा दिखता है ये पतंगा। कई बार ये स्ट्रीट लाइट के इर्द गिर्द इतने सारे पतंगे घूमते रहते हैं। तो ये जो पतंगा, ये जो कीड़ा है, ये वशीभूत रहता है अग्नि की लौ को देखने में। अपनी आंखों को संतुष्ट करने में, तो पतंगा का उदाहरण आंखों के संदर्भ में है कि ये पतंगा जब अग्नि जल रही है तो ये पतंगा इतना आकर्षित रहता है अग्नि को देखने में कि सबसे पहले ये अग्नि की प्रदक्षिणा करना शुरू करता है। जैसे हम जब किसी की पूजा करते हैं तो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, तो ये पतंगा अग्नि की पूजा करता है अपनी आंखों के द्वारा और प्रदक्षिणा करता है। इतना ही नहीं, ये पतंगा इतना वशीभूत हो जाता है इस अग्नि को देखने में कि ये पतंगा स्वयं प्रवेश कर जाता है उस अग्नि की लौ में। और क्या होता है, जलकर भस्म हो जाता है। तो ये पतंगा अपने प्राण खो बैठता है जब ये जाता है अपनी आंखों को संतुष्ट करने। प्राण खो बैठता है। तो ये सबसे पहला उदाहरण इस प्राणी का आंखों के संदर्भ में। पतंग मातंग, ये दूसरा प्राणी है हाथी। बहुत विशाल इसका शरीर, इसकी काया इतनी बड़ी होती है, परंतु हम देखते हैं कि एक 5 फुट का आदमी महुत इस बड़े हाथी के ऊपर बैठकर इससे क्या कुछ नहीं करा लेता। सर्कस देखा है, सर्कस में बड़े बड़े हाथी, उनको ये महुत, छोटा सा 5 फुटी महुत, ये कहता है चलो दर्शकों को दिखाओ, नमस्ते करो। इतना बड़ा हाथी भीगी बिल्ली के समान दर्शकों के सामने जो ये महुत कहता है वो कर लेता है। ये हाथी के विषय में कहा गया है कि हाथी की आंखें छोटी होती है और कान बहुत बड़े बड़े होते हैं हाथी के। क्यों? क्योंकि यदि हाथी अपने स्वयं के शरीर को देख ले पीछे तो वो किसी को न छोड़े। तो इसलिए उसकी आंखों के पीछे इतने बड़े बड़े कान हैं कि हाथी देख भी नहीं पाता। यदि कोई आईना दिखा दे तो ठीक है, तो हाथी देख नहीं पाता कि कितना बड़ा शरीर लिए है वो, इतने बड़े शरीर से वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अरे उस महुत को तो एक सूंड में पकड़कर रौंद सकता है अपने पैरों के नीचे ये हाथी, परंतु ये हाथी वशीभूत हो जाता है इस महुत के नीचे। कारण क्या है, उस हाथी को ये मनुष्य पकड़ता कैसे है। हाथी ये बहुत आकर्षित रहता है स्पर्श इंद्रिय से। कौन सी इंद्रिय? स्पर्श इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय। तो ये महुत जानता है कि ये कमी है इस हाथी में, तो इस हाथी को पकड़ने के लिए करता क्या है, ये गड्ढा खोदता है। पहले हाथी जिसमें फंस जाए इतना बड़ा गड्ढा, और उसे वो नर्म घास से ढक देता है, और फिर उस गड्ढे के सामने वो दूसरे हाथी का पुतला रख देता है। यदि नर हाथी को पकड़ना है तो मादा हाथी का पुतला रखेगा, और यदि मादा हाथी को पकड़ना है तो नर हाथी का पुतला। तो जब हाथी दूर से देखता है, अरे मेरा प्रियतम कहां है तू मेरा प्रियतम, और वो हाथी भागता है स्पर्श करने के लिए अपने प्रियतम को। वो प्रियतम है क्या? एक पुतला। तो जब वो हाथी भागता है अपनी त्वक इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए, तो उस गड्ढे में फंसता है। तो हाथी वो वशीभूत हो जाता है अपनी त्वक इंद्रिय के कारण। दूसरा उदाहरण है ये। तीसरा उदाहरण कुरंग। कुरंग कहते हैं एक हिरण को। एक हिरण बहुत ही चुस्त प्राणी है, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है एक हिरण। एक शिकारी यदि हिरण को पकड़ना चाहे तो वो अपनी बाणों से भी उस हिरण को नहीं मार पाता। परंतु हिरण में एक कमी, हिरण वशीभूत रहता है अपनी कर्णेन्द्रिय। वो बहुत ही मधुर मधुर कोई गीत या ध्वनि सुनने के बहुत इच्छुक रहता है ये हिरण। तो शिकारी जानता है कि ये कमी है इस हिरण में, तो शिकारी बाण चलाने से पहले बांसुरी बजाता है और उस बांसुरी की मधुर ध्वनि जब वो हिरण सुनता है अपने कर्णों से तो हिरण एक जगह पर स्तब्ध रह जाता है और एक जगह पर खड़ा रह जाता है वो हिरण। उस समय वो शिकारी अपना धनुष बाण निकालता है और उस पर प्रहार करता है। एक कवि ने अपनी कविता में कहा है कि ये जो हिरण जिसे छल से इस शिकारी ने मार दिया, पहले बांसुरी बजाई हिरण को रोका और फिर बाण चलाया, तो छल से शिकारी ने हिरण को मारा। तो कवि कहता है कि ये मरता हुआ हिरण शिकारी को क्या कहता है। शिकारी से कहता है कि ए शिकारी, मैं जानता हूं तुमने छल से मुझे मारा है, परंतु मुझे कोई शिकायत नहीं तुम्हारे प्रति। तुमने छल किया होगा परंतु कोई शिकायत नहीं मुझे। एक ही प्रार्थना है मेरी कि मेरे मरने के पश्चात मेरा ये जो चाम है, मेरी जो चमड़ी है, उसे तुम और वाद्य बनाने में लगाओ। बजाने वाले जो वाद्य होते हैं वो चाम से बनते हैं। तो हिरण वो शिकारी से कहता है कि यही मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे चाम को और वाद्यों को बनाने में दे दो, ताकि ये जो ध्वनि है, ये जो संगीत का सिलसिला है, ये कभी खत्म न हो। तो हिरण अपने प्राणों को खो बैठता है जब वो वशीभूत होता है अपनी कौन सी इंद्रिय के प्रति। कर्णेन्द्रिय। शायद आपकी कर्णेन्द्रिय यहां पर नहीं है कुछ समय के लिए। तो ये कौन सा प्राणी? तीसरा। चौथा प्राणी भृंग। भृंग वो बड़ा काला भौरा, उसे कहते हैं भृंग। क्या कहते हैं मराठी में? भोंगा, भुगा। तो ये काला भौरा, ये काला जो भौरा है, इसके अंदर इतनी शक्ति प्रकृति ने दी गई है इसे। कहा गया है दारू भेद निपुणों पी, कि एक पेड़ में से ये छेद कर बाहर निकल सकता है। जैसे वो ड्रिलिंग मशीन वो होल कर देता है ना, ड्रिलिंग मशीन। तो ये जो भौरा है इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये पेड़ में से भेद के बाहर आ सकता है। दारू भेद निपुणों की, ऐसा ड्रिलिंग मशीन इसके अंदर फिट किया गया है। परंतु यही भौरा पंकज कोशे निष्क्रिय भवती, कि जब कमल के पुष्प के मध्य में जाकर बैठता है, क्यों? सूंघने के लिए। उस कमल के पुष्प की सुगंध को सूंघने हेतु जब वो भौरा बैठता है तो वो उस कमल के पुष्प का संग छोड़ना नहीं चाहता। यहां तक कि रात्रि के समय वो कमल का पुष्प बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है और वो भंवरा उस बंद कमल में कैद हो जाता है। तो क्या ये भंवरा जो कि एक पेड़ में भेद कर बाहर आ सकता है, क्या कमल की पंखुड़ियों को भेद कर बाहर नहीं आ सकता? अवश्य आ सकता है, परंतु आना नहीं चाहता, क्योंकि यदि वो कमल के पुष्प से बाहर आएगा तो वो जो इंद्रिय भोग उसे मिल रहा है, नासिक इंद्रिय, इस इंद्रिय भोग को छोड़ना होगा उसे। तो जब सुबह वो कमल का पुष्प खिलता है तो वो भंवरा उस कमल के पुष्प में मरा हुआ पाया जाता है, घुटकर वो मर जाता है, परंतु वो इंद्रिय भोग छोड़ता नहीं, सुगंध लेने का इंद्रिय भोग छोड़ता नहीं उसे वो। तो ये भंवरा अपने प्राण खो बैठता है, कब? जब वो अपने इस नासिक इंद्रिय को संतुष्ट करने जाता है। कौन सा उदाहरण हुआ? चौथा उदाहरण हो गया। पांचवा उदाहरण है मीन। मीन किसे कहते हैं? मछली को। मछली सरोवर में रहती है, क्या गया कहा गया है? मछली का जीवन है पानी। कौन सी थी वो कविता? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आगे, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कविता सबको याद है। तो ये मछली जो कि जल की रानी है, इसे जल की रानी बताया गया है और इसका जीवन है पानी, परंतु ये मछली, इसे वो मछुआरा पकड़ता कैसे है? एक तो जाले से, एक और तरीका क्या है? जब वो लालच देता है, जब वो कुछ खाद्य पदार्थ उस पर अटका कर फेंकता है तो मछली देखती है, हालांकि जल ही उसका जीवन है, परंतु उस जीवन को छोड़कर वो देखती है ये नया होटल खुला लगता है आज, ये कौन सा नया होटल खुला, चलो जाकर चखें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो मछली लालच से जब जाती है उसे खाने, तो होता क्या है? पकड़ी जाती है और फिर जल से बाहर निकाली जाती है और मर जाती है। तो मछली वो अपने प्राण खो बैठती है, कब? जब वो अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने जाती है ये मछली। तो ये मछली प्राण खो बैठती है अपनी जिह्वा के वशीभूत होकर। तो ये हुआ पांचवा उदाहरण। हो गए पांच? खुश है ना सब? आगे सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर है आगे का श्लोक, ध्यान से सुनिए। तो कहा गया है पतंग मातंग तुरंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच। ये पांच प्राणी ये अपने प्राण खो बैठते हैं, कब? एकम प्रमाथी, ये केवल अपनी एक ही इंद्रिय के पीछे भागे थे उसे संतुष्ट करने के। जो हाथी वो मरा जिह्वा के कारण नहीं, त्वचा के कारण। मछली मरी आंखों के कारण नहीं, जिह्वा के कारण। हिरण मरा कानों के कारण, वो अपने नाक के कारण नहीं मरा। तो एक एक प्राणी यदि हम ये लें इनका उदाहरण, एकम प्रमाति, केवल एक ही अपनी इंद्रिय के पीछे पागल थे ये प्राणी, केवल एक इंद्रिय को संतुष्ट करने गए और नतीजा क्या निकला, प्राण खो गए, हतम, मरेंगे। तब फिर एक प्रश्न पूछा गया है, सुनना चाहेंगे प्रश्न? स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच, उस प्राणी का क्या कहना जो अपने पांचों इंद्रियों को एक साथ संतुष्ट करने में लगा है, कौन है वो प्राणी? हम मनुष्य। पांचों इंद्रियों को एक साथ संतुष्ट करने के पीछे ये मनुष्य भाग रहा है, आंखों को भी संतुष्टि चाहिए, नाक को भी चाहिए, कान को भी चाहिए, जिह्वा को भी चाहिए, त्वचा को भी चाहिए, सभी इंद्रियों को एक साथ, एक एक कर भी नहीं, एक साथ चाहिए कई बार। और ये कौन सी स्थिति में देखा गया है? जब कोई फिल्म देखने जाता है, ये थिएटरों में जाते हैं ना फिल्म देखने, तो फिल्म देखने जाता है, सिनेमा देखने, तो वहां पर पर्दे पर सुंदर सुंदर आंखों को लुभाने वाले रूप आने चाहिए, है ना? अरे देखो मेरा बांका छेला हीरो, और मेरी फेवरेट। तो आंखों को संतुष्टि लुभाने वाले रूप वो चाहता है, और फिर उसके साथ साथ सुंदर सुंदर गीत भी होने चाहिए, है कि नहीं? वो किसके लिए? एक कानों के लिए। कई बार देखा जाता है कि पिक्चर शुरू हो गई, आवाज नहीं है, तो यहां से आवाज निकलती है, फिर ये सारे दर्शक आवाज शुरू करते हैं, आवाज आवाज, है ना? तो उन रूपों के साथ सुंदर सुंदर आवाज भी ये कर्ण चाहते हैं साथ साथ। यहां पर हम कौन से मुद्दे को लिए हैं? एक एक कर नहीं, साथ साथ। आंखों के लिए रूप, कानों के लिए सुंदर ध्वनि, तो ये साथ। उसके पश्चात बहुत ही आरामदायक वो सीट होती है उन सिनेमा घरों की, पीछे कर आगे कर कहां कहां क्या क्या कर बैठो, वो किसके लिए? पक्ष इंद्रिय, इस त्वचा को संतुष्ट करने के लिए। और क्योंकि इतने सारे एक साथ वो सिनेमा घरों में बैठे रहते हैं, तो आजकल ये सिनेमा घरों में वो लोग वो छिड़काव करते हैं, रूम फ्रेशनर। क्यों छिड़काव करना पड़ता है? क्योंकि ये शरीर स्वाभाविक रूप से दुर्गंध फैलाता है, और वो भी आजकल लोग क्या क्या खाते हैं तो पता नहीं, पिछली रात क्या खाया होगा जो बैठे हैं वहां पर। इसलिए ये नासिक इंद्रिय के लिए संतुष्टि मिले, इसलिए वो सुगंधित परफ्यूम फैलाया जाता है। तो आंखें रूपों को देख रही है, कान जो है वो मधुर गीत को सुन रहा है, त्वक इंद्रिय आरामदायक सीट पर आराम फरमा रही है, और ये जो नासिका है ये सुगंध सूंघ रही है। और इतना ही नहीं, ये सब कुछ होते समय ये मुंह चरता रहता है, इसका चर्वण भी चालू रहता है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है, एकम प्रमाथि सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। क्यों नहीं वो प्राणी अपने प्राण खो बैठेगा जब वो पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक साथ भाग रहा है। तो ये जो देह रंजन के पीछे बद्ध जीव भाग रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उसका। और उसके साथ मनोरंजन। परंतु हमें इस मनुष्य देह में देह रंजन से ज्यादा, मनोरंजन से ज्यादा हमें अपना उद्देश्य सिद्ध करना है, आत्मरंजन। अपने आत्मा को संतुष्टि हम दे रहे हैं कि नहीं। इसलिए जब हम कथा का श्रवण कर रहे हैं तो उसे मनोरंजन के लिए नहीं अपितु आत्मरंजन हेतु हमें सुनना होगा। तब जाकर हम परीक्षित महाराज के पद चिन्हों का अनुगमन कर पाएंगे। इसलिए जब भगवान एक दिन उन्होंने देखा कि नंद महाराज लगे हुए हैं और सारे ब्रजवासी लगे हुए हैं, किसमें? इंद्रयाग में लगे हुए हैं। इंद्र को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ की तैयारी हो रही है। तो भगवान वहां पर पहुंचते हैं और नंद महाराज से कहते हैं, बाबा क्या हो रहा है आज? तो नंद महाराज कहते हैं, भगवान कितने बड़े हैं? 7 साल के हैं केवल। तो 7 वर्षीय बालक अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी क्या हो रहा है, ये इतनी तैयारियां, भागम दौड़ क्या हो इसको? तो नंद महाराज समझाते हैं, कन्हैया वार्षिक इंद्र यज्ञ इसका समय आ गया है, तो इंद्र की पूजा। तो यहां पर भगवान देखिए, जो कि धर्म की स्थापना करने आते हैं, अब भगवान इंद्र की पूजा रोकने हेतु नास्तिकवाद का प्रचार करना शुरू करते हैं अपने ही पिता को। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? क्या आवश्यकता है इंद्र की पूजा करने की? अरे सारे जो देवता हैं, ये हम जो कुछ चाहते हैं ये देना होगा इन्हें, यदि हम अपना कर्म ठीक करें तो। तो भगवान इंद्र का यज्ञ रोकना चाहते हैं और इसलिए इंद्र को दिखाते हुए भगवान ये कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने नंद महाराज से कहा कि अरे भाई, हम वैश्य हैं और वैश्य होने के नाते हमारा व्यवसाय क्या है? गोरक्षा वाणिज्यम, ये हमारा व्यवसाय है। तो गोरक्षा के लिए हमें, गवों की रक्षा के लिए हमें चाहिए घास। तो घास हमें कौन दे रहे हैं? ये श्री गोवर्धन। तो क्यों ना गोवर्धन की पूजा हो जाए? ये इंद्र की पूजा रोको और इसके बदले गोवर्धन की पूजा करो। तो जब इंद्र ने ये सब कुछ सुना कि ये 7 वर्षीय गोप, वृंदावन के गांव का एक 7 वर्षीय गोप, इतनी हिम्मत कि मुझ महेंद्र का यज्ञ रोक रहा है, इसलिए इंद्र कहते हैं, वाचालं बालिशं शब्दम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्य उपाश्रित्य गोपामे चक्रुर प्रिय। इंद्र ने कहा कि ये कौन है? बालिश, वाचालम, अज्ञ, अपने आप को पंडित माना हुआ, बहुत बड़ा बड़ा दर्शन शास्त्र और भाषण झाड़ रहा है, कौन है ये? किसके विषय में? उनके ही आराध्य प्राणेश्वर भगवान के विषय में इंद्र ये सब कह रहे हैं। तो यहां पर शब्दों पर गौर कीजिए कि इंद्र कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वाचालम, बालिशम, तब्दम, अज्ञम, पंडित मानिनम। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं कि मानो माता सरस्वती इंद्र की जिह्वा पर बैठकर, हालांकि ये दिखने में सुनने में गाली गलौच लगती है कि इंद्र अपशब्द कह रहे हैं, परंतु चक्रवर्ती पाद ये टीकाकार भागवत के कहते हैं कि माता सरस्वती इंद्र की जिह्वा पर बैठकर इंद्र से भगवान की स्तुति करा रही थी इन्हीं शब्दों के द्वारा। वाचालम का अर्थ क्या है? जो बहुत बातूनी होता है उसे कहते हैं संस्कृत में वाचालम। बालिशम, छोटा सा बालक। तब्दम, जो बहुत हटी होता है उसे कहते हैं तब्दम। अज्ञम, जो कि अज्ञ है, कुछ जानता नहीं। पंडित मानना, अपने आप को अज्ञ होने के बावजूद अपने आप को पंडित मान लेता है। तो ये सब अपशब्द हुए, परंतु माता सरस्वती इंद्र की जिह्वा पर बैठकर इंद्र से क्या बुलवा रही थी कि सही बात है, भगवान श्री कृष्ण हैं ये सब। कैसे हैं? कि भगवान के मुख से सारे वेद शास्त्र निकले हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सारा जो धर्म है, सारे धर्म शास्त्र हैं, वो भगवान के मुख से निकले हैं। तो अरे भाई, इतना सारा धर्म शास्त्र और कितने धर्म शास्त्र हैं, कितने वेद पुराण हैं? 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण और उनके कितने सारे उप पुराण हैं। केवल ये भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक, रामायण में 24,000 श्लोक, ऐसे कितने सारे वैदिक ग्रंथ हैं और ये सब भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो भगवान वाचालम हुए कि नहीं? अरे बातूनी हुए कि नहीं भगवान? इतना कुछ जो मुंह से निकले तो वो बातूनी ही होगा ना, तो सही बात है। बालिशम, बालिशम का अर्थ क्या है? कि जैसे एक बालक निर्दोष, बालक हर समय निर्दोष रहते हैं, मासूम होते हैं बालक। तो इंद्र सही कह रहा है कि ये कृष्ण बालिशम, इनसे ज्यादा निर्दोष और कौन है, इनसे ज्यादा मासूम और कौन है। और बालिशम वाचालम का एक और अर्थ यह हुआ कि यदि कोई बालक भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले, कोई बालक भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तो वो बड़े बड़े महावाक्य बोल सकता है। वाचालम, ये भी इसका एक अर्थ है। स्तब्धम, स्तब्धम कहते हैं जो कि किसी के सामने न झुके, वो है स्तब्धम, जो किसी के सामने अपना सर न झुकाए। अरे तो कौन है जिनके सामने ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सर झुकाना पड़ेगा? वो जो स्रोत हैं सबके, वो जो अगम अगोचर हैं, वो तो हुए ही स्तब्धम ना, सभी तो उनके सामने अपना माथा टेके हैं। तो इसलिए इंद्र ने सही कहा शब्दम अज्ञम। अज्ञम का अर्थ क्या है? कि जो कुछ जानता नहीं। इसका एक और अर्थ है कि ये भगवान जिन्हें जानने योग्य या इस संसार में कुछ जानने योग्य इनके लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो ये जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भगवान ने कहा है कि जो भूत में बीत चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा, वो सब कुछ मैं जानता हूं। तो इसलिए भगवान अज्ञ हुए कि नहीं? कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान नहीं जानते? कोई भी ऐसी वस्तु नहीं भगवान के जानने योग्य, इसलिए अज्ञम। पंडित मानिनम का अर्थ क्या है? बड़े बड़े पंडितों ने मान लिया है कि यही है भगवान, यही है भगवान। बड़े बड़े पंडितों ने ये मान लिया है। तो यहां पर हालांकि इंद्र का मनोभाव था अपशब्द कहना, परंतु माता सरस्वती इंद्र की जिह्वा पर बैठकर भगवान का गुणगान करा रही थी। इसलिए ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा को हमें हर समय भगवान के गुणगान में लगाते रहना चाहिए। यदि इस जिह्वा को भगवान के गुणगान में नहीं लगाएंगे तो ये जिह्वा केवल अपशब्द ही कहेगी। इसलिए कीर्तनीय सदा हरि, इस जिह्वा को हर समय भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन में लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बोलिए।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
लॉर्ड हरि बोल।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए जिह्वा को हर समय, ये जो जिह्वा है हमारी, इसके विषय में कहा गया है, तार मध्ये जिह्वार अति लोभमय सुदुर्मती। हमारी सारी इंद्रियों में से ये जो जिह्वा है ये अति लोभमय है। हमने उदाहरण लिया हमारे पंच इंद्रिय का और पांच प्राणियों का। तो ये जो पांच इंद्रियां हमारी है, इसमें से ये जो जिह्वा है ये अति लोभमय है। क्यों? इसकी गणना हम थोड़ा करेंगे, कैलकुलेशन, कि हमारी दो आंखें हैं, कितनी है, दो है ना सबकी, तो दो आंखें हैं परंतु कार्य एक, कौन सा कार्य, देखने का। हालांकि कई बार देखते हैं कहीं पे निगाहें और निशाना कहीं पर होता है, परंतु दोनों आंखों का कार्य एक है, देखने का। आंखें दो, कार्य एक। कितने कान हैं, दो ही है ना, कान दो है परंतु कार्य एक, सुनने का। हालांकि बहुत कम बार ये जो कान हैं ये ठीक से सुनते हैं, कई बार तो कुछ अंदर घुसता ही नहीं। वो कहानी याद है यदि आपको तो, हाँ, कुछ घुसता ही नहीं कई बार अंदर, या फिर घुसता है तो यहां से घुसा वहां से बाहर। तो दो कान हैं, कार्य एक, दो नासिका, कार्य एक, सूंघने का, परंतु जिह्वा एक है और इसके कार्य हैं दो। कौन सा कार्य, या तो कुछ अंदर डालती रहती है, जब वो हो गया अंदर डालने का काम तो जिह्वा फिर शब्दों के रूप में बाहर कुछ फेंकती रहती है। तो या तो खाओ या बको, बको खाओ, खाओ बको, बको खाओ, ये जिह्वा का काम। इसलिए कहा गया है कृष्ण बड़ा दयामय, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस जिह्वा के दोनों कार्यों के लिए वो अवतरित हो गए। खाने के कार्य के लिए भगवान प्रसाद के रूप में, आप लोग सब प्रसाद लेकर जा रहे हैं ना रोज, अच्छा लग रहा है, बस इतना ही अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इस जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट करने के लिए भगवान अपने प्रसाद के रूप में, अन्न प्रसाद के रूप में भगवान अवतरित हुए। और यदि इस जिह्वा से कुछ बाहर निकालना है तो इस जिह्वा से बाहर निकालने के लिए भगवान अपने नाम के रूप में आए हैं। इसलिए हम उस दिन गा रहे थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो जमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो जमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए
कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए।
सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भव रोग, काम रोग, ये सबसे बड़ा रोग है।
जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव
सब बोलिए,
केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव हरि हरि बोल,
राम राम बोल, राम राम 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 बोल,
कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल,
कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल,
कृष्ण कृष्ण बोल,
कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल,
हे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर 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 हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि बोल,
गौर हरि बोल, गौर हरि बोल।
तो ये जिह्वा हमारी जो है, इसे यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इसे कहा गया है ये असती। ये उस वैश्या के समान है जो पर पुरुष गमन में लगी हुई है। तो इस जिह्वा को हमें यदि सती बनाना है, यदि सती सावित्री इस जिह्वा को बनाना है, तो केवल इन्हीं पुरुष की सेवा में इस जिह्वा को लगाना है, तब जाकर ये जिह्वा जो है ये सती सावित्री कहलाएगी। नहीं तो ये जिह्वा उस असती उस वैश्या के समान है जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, जो एक कलंक है। तो यदि हम अपने जीवन को कलंक से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें इस जिह्वा को या तो भगवान के प्रसाद को पाने में या इस हरिनाम को गाने में लगाना चाहिए। तो इंद्र हालांकि अपनी जिह्वा से अपशब्द कह रहे हैं, वाचालम बालिशम तब्दम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्रुर अप्रिय, कि ये कृष्ण ये केवल 7 वर्षीय बालक ये गोप, इतनी उद्दंडता इसकी, इतनी हिम्मत कि ये मुझ महेंद्र का यज्ञ रोक पाए। तो इसने केवल इतना ही नहीं कहा बल्कि तुरंत इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया। ये संवर्तक बादल कौन है? ये संवर्तक बादल उस समय इस्तेमाल में आते हैं जब इस पूरी सृष्टि का संहार करना होता है। तो जब इस पूरी सृष्टि का संहार करना होता है तो ये संवर्तक बादलों को बुलाया जाता है इतनी वर्षा करने के लिए कि बाढ़ में ये पूरी सृष्टि बह जाए। और ये संवर्तक बादल जो हैं, ये वर्षा कैसे करते हैं? ये संवर्तक बादलों की वर्षा होती है एक बूंद खंभे के समान बड़ा, एक एक बूंद इस वर्षा का। जैसे इस हॉल के बाहर ये खंभे जो हैं, मानो इतने बड़े बड़े खंभे, ये एक बूंद संवर्तक बादलों की वर्षा का। तो इंद्र ने ये संवर्तक बादलों को बुलाया ब्रजमंडल को विध्वंस करने के लिए। अरे ब्रजमंडल एक गांव को विध्वंस करने के लिए संवर्तक बादलों को इंद्र ने बुलाया। देखो कितना क्रोध में था इंद्र। और इंद्र ये स्वयं, इंद्र कौन है? इंद्र स्वयं वर्षा के अधिष्ठात्रा देव हैं। मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम एक कथा में बैठे हुए थे तो कथाकार रामायण पर कथा कर रहे थे। तो उन्होंने वो प्रसंग शुरू किया जब हनुमान जी लंका गए हैं और लंका जला रहे हैं। सबको पता है लंका दहन। तो हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण का पुत्र कौन? इंद्रजीत। उसे वो नाम कैसे मिला? क्योंकि इंद्र को जीता था, उसने इंद्र को जीता था, इसलिए उसे वो नाम मिला था इंद्रजीत। तो हनुमान जी अब लंका जला दिए हैं, लंका जल रही है। तो कथाकार ने कहा कि इंद्रजीत बाहर आया, देखा कि सारी लंका जल रही है, चारों तरफ आग आग आग। तो इंद्रजीत ने इंद्र को आह्वान दिया कि तुरंत तुम्हें मैंने जीता है इंद्र, तुरंत तुम अपने बादलों को लाओ और लंका के ऊपर वर्षा करो। तो इंद्रजीत ने इंद्र को आह्वान दिया और इंद्र बादलों को लेकर आए। तो हनुमान जी देखते हैं इंद्र अरे तुम प्रभु राम के सेवक हो या इसके? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें सहायता करनी चाहिए प्रभु श्री राम के इस मिशन में सीता को फिर से लाने के, और तुम इस इंद्रजीत की सहायता कर रहे हो, रावण के इस पुत्र की जिसने सीता का हरण किया। तुम्हें याद है वो कथाकार थोड़ा विनोद में कहे, उन्होंने कहा कि इंद्रदेव वो हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी क्या इतना भी विश्वास नहीं मेरे ऊपर? क्या इतना भी विश्वास नहीं कि मैं किसका सेवक हूं? तो हनुमान जी ने कहा, यदि राम के सेवक हो तो ये बादलों को क्यों लाया है? तो कथा में कहा गया था, इंद्र कहते हैं हनुमान जी से कान में जाकर कहते हैं, बादल अवश्य आए हैं परंतु बादल में पानी नहीं, पेट्रोल है। तो चिंता मत करो, बादल आ गए हैं, अरे जो हनुमान जी आपने कार्य किया है उसमें मैं चार चांद लगाऊंगा या चार सूर्य लगाऊंगा। परंतु यहां पर इंद्र ने जब संवर तक बादलों को बुलाया तो संवर तक बादलों को ब्रज मंडल को विध्वंस करने हेतु, और इतना ही नहीं भगवान इसके बीच क्या किए, भगवान ने जब नंद महाराज को कहा कि इंद्र याग बंद करो गोवर्धन की पूजा शुरू, तो नंद महाराज देखिए जो सबसे वरिष्ठ गोप ब्रजमंडल के, जो सभी गोपों के मुखिया ब्रजराज नंद महाराज, उन्होंने तुरंत अपने 7 वर्षीय पुत्र के इन वचनों का पालन करना शुरू कर दिया। अब नंद महाराज और सारा गोप समुदाय हर वर्ष वो इंद्र की पूजा इस प्रकार से किया करते थे, केवल इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, 7 वर्षीय भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नंद महाराज ने कैंसल कर दिया इंद्र यज्ञ कैंसल, और कैंसल ही नहीं रद्द ही नहीं किया, बल्कि बदले में गोवर्धन एक पर्वत की पूजा। तो सोचिए इंद्र कितना ज्यादा वो आग बबूले हुए होंगे। यहां पर हम क्या शिक्षा ले रहे हैं? हम ये शिक्षा ले रहे हैं कि हमें नंद महाराज और अन्य गोप गण इनकी तरह भगवान पर श्रद्धा जमानी है, कि हालांकि देवता की पूजा होने वाली थी, इंद्र 33 करोड़ देवताओं में से एक हैं इंद्र, परंतु यहां पर नंद महाराज ने अपने उदाहरण से दिखा दिया, सिखला दिया एक निष्ठ कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए। तो हम क्या सीखते हैं कि हमें यदि अपने जीवन को उसके परम उद्देश्य तक ले जाना है तो कोई आवश्यकता नहीं, हमने कहा, और किसी के द्वार को खटखटाने की। अरे जब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, जो सभी के स्रोत हैं, जो कह रहे हैं अहम आदिर्हि देवानाम, वो कहते हैं कि मैं सभी देवताओं का आदिर हूं, महर्षि नाम च सर्वशः, और मैं सभी का स्रोत हूं, और सभी इस प्रकार से उन्हें जानते हैं और मानते हैं। और वो स्वयं कह रहे हैं अपने ही मुख से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपने ही मुख से भगवान हमारे उद्धार की पूंजी हमें दे रहे हैं हमारे हाथों में, कि यदि हमें हमारे पापों से मुक्ति विमुक्ति हम चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन की डोर इन माखन चोर की ओर। इसलिए हमने कल क्या गाया, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषम नमामि। उन चोर को मैं नमस्कार करता कि जो अग्रणी है सब चोरों में, क्योंकि उन्होंने मेरे पापों जन्म अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम अनेक जन्मों के जो पाप मैंने इकट्ठा कर रखा है उनकी चोरी कर ली है इन्होंने। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम सभी धर्मों को त्याग कर हमारी सभी निष्ठाओं को त्याग कर जब हम एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगेंगे तो ये जो श्लोक है 18वें अध्याय का श्लोक अंतिम अध्याय भगवत गीता का, भगवान भगवत गीता का निष्कर्ष हमें सुना रहे हैं। संपूर्ण शरणागति कैसे करें, किसके प्रति हो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य और सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दो बार सर्व शब्द इस्तेमाल किया है भगवान ने। जब तक सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं हो रहा हमारे जीवन में तब तक सर्व पापेभ्यो सभी पापों का नाश भी नहीं होगा। जिस हद तक भगवान के प्रति हम समर्पित होंगे उतने हद तक पापों का नाश होगा। तो हम कितने हद तक पापों का नाश करना चाहते हैं, क्या हम सब चाहते नहीं कि हमारे संपूर्ण पापों का नाश हो, चाहते हैं कि नहीं। तो यदि हम हमारे संपूर्ण पापों का नाश चाहते हैं तो क्या करना होगा, संपूर्ण तरीके से भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना होगा हमें। जैसे नंद महाराज, उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया, यदि कृष्ण तुम्हें ये प्रसन्न करता है तो इंद्र यज्ञ में रोक रहा, और यदि तुम्हें इस बात में प्रसन्नता मिलती है कि गोवर्धन की पूजा हो, वही सही, वही सही। तो इसलिए एक जो भक्त है वो क्या जानता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। और इसके साथ साथ वो और क्या जानता है, कृष्णेर स्वरूप होए जीवेर नित्य बॉस। कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना और कृष्ण का स्वरूप है जीव का नित्य बॉस होना। तो नंद महाराज तुरंत जो भगवान कहें, तुरंत नंद महाराज ने भगवान की आज्ञाओं का पालन किया, जो उनके पुत्र रूप में 7 वर्षीय बालक तुरंत भगवान ने ही कहा कि गोवर्धन की पूजा कैसे होनी चाहिए। सभी ब्रजवासीगण अपने घरों से जो भी पकवान जो कुछ है रसोई घर में सब खाली कर पकाकर सारे अन्न सभी सब्जियां फल दूध दही माखन सब कुछ लेकर आओ। कहां पर, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन के पास और तुरंत एक प्रकार का भव्य उत्सव शुरू हुआ वृंदावन में गोवर्धन का गुणगान करने हेतु। और सभी अपने घरों से जो कुछ था, एक एक अन्न का दाना, जो कुछ रसोई घर में, सब कुछ खाली कर वो गोवर्धन को प्रसन्न करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जब वहां पर ये सब कुछ प्रस्तुत किया उन्होंने, इसे कहते हैं अन्नकूट, अन्नकूट महोत्सव। अन्न का एक पर्वत, अन्नों का पर्वत और खीरों के कुंड, लड्डुओं के पर्वत, दाल के कुंड, कुंड और पर्वत, ये सब कुछ अर्पित हो रहे। और उस समय भगवान, 7 वर्षीय भगवान, उन्होंने अपना विस्तार किया और भगवान गोवर्धन बन गए। फिर गोवर्धन पर आरूढ़ हुए और भगवान ने सारा भोग क्षणों में समाप्त कर दिया। और क्षणों में समाप्त करने के पश्चात भगवान क्या कहने लगे, अनियोर अनियोर, और लाओ और लाओ, और मांगने लगे भगवान। तो सब कुछ ले आए थे ये ब्रजवासी गण, अंत में इन्होंने पहचान लिया कि भगवान को संतुष्ट करना है तो तुलसी का एक पत्ता, तुलसी का पत्ता जब भगवान को अर्पित किया गया तब भगवान संतुष्ट हुए। और फिर वो सारा जो भोग भगवान लिए थे, अब प्रसाद में भगवान ने उसे परिणित कर पुनः उपस्थित कर दिया। इसलिए कृष्णा बड़ा दयामय। कई बार हमें लगता है कि अरे भाई, हम इतना सब कुछ इन्हें भोग चढ़ा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, इसलिए सबसे छोटी कटोरी लाओ और उस छोटी कटोरी में भी 2-3 दाना केवल, ज्यादा नहीं, खड़ी शक्कर का केवल 2-3 दाना रखना, ताकि खा भी लिया तो कोई गम नहीं। परंतु ब्रजवासी गण, उनकी श्रद्धा ऐसी कोमल श्रद्धा नहीं थी उनकी, जो कुछ भगवान कह रहे थे उन आज्ञाओं का पालन वो दृढ़ता से कर रहे थे। इसे कहते हैं दृढ़ श्रद्धा। तो भगवान ने फिर पुनः सब कुछ उपस्थित कर दिया और फिर बहुत भव्य गोवर्धन की पूजा हुई। इसके पश्चात फिर भगवान ने सभियों को कहा कि अब हम सब मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और सबसे पहली परिक्रमा गोवर्धन की, भगवान स्वयं वो अग्रणी बनकर, उन्होंने सभी ब्रजवासी गण को पीछे लेकर भगवान ने सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की। गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन। गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन। बोलो गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन। बोलो गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जय गिरी गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज बोलो गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन बोलो गिरिराज महाराज की। तो गोवर्धन की परिक्रमा इसकी शुरुआत भगवान स्वयं ने की और हम अब चलते हैं अमरावती इंद्रपुरी वहां पर क्या हो रहा है ये सब इंद्र जब देख रहे हैं इंद्र अपने क्रोध को वो अपने आप में नहीं रख पा रहे संवर तक बादलों को उन्होंने कहा तुरंत तुरंत जाकर उस उद्दंड बालक और उस उद्दंड बालक के पीछे ये सारा गोप समुदाय को खत्म करो विनष्ट करो उस ब्रज भूमि को। तो संवर तक बादल सारे संवर तक बादल वहां पर पहुंच गए और उन्होंने फिर वर्षा शुरू की और ऐसी वर्षा एक एक बूंद एक एक बड़े बड़े खंभे के समान बड़ा बड़ा एक एक बूंद तेज हवाएं तूफान वर्षा और उस समय सारे गोप सखा पूरा गोप समुदाय जब उन्होंने देखा कि ये सब अचानक जान गए क्या जान गए कि क्योंकि हमने इंद्र यज्ञ नहीं किया तो इंद्रदेव अप्रसन्न होकर हमें दंडित कर रहे हैं जान गए। तो कल्पना कीजिए ये पूरा गोप समुदाय इन्होंने क्या किया होगा या साधारणतः कोई व्यक्ति वो क्या करता जब जान लेता कि इंद्र यज्ञ रोकने से ये सब कुछ हो रहा है तो सबसे पहले तुरंत इंद्र से क्षमा मांगता कि नहीं और कृष्ण को डांटता देखो तुम्हारे वजह से अब क्या हो रहा है पूरे वृंदावन में बाढ़ आई है सब मरने वाले हैं। साधारणतः कोई ऐसे करता परंतु नहीं सारे गोपगण सारे पूरा समुदाय गोप समुदाय वो गए फिर से कृष्ण के पास कृष्ण कृष्ण महाबाह त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवाना कुपिताद भक्तवत्सल। वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रार्थना करने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग हे कृष्ण दो बार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रेम से करुणा से भावना से और पुकार रहे हैं कि आप जो भक्तवत्सल हो भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल। ये नाम भगवान को कैसे मिला वत्सल ये वत्सल ये संस्कृत शब्द है इसका अर्थ है वत्सला गौ इति वत्सल। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को तो गाय के बछड़े में और गाय में कितना प्रेम होता है ये कहा गया है कि जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो अपनी जिह्वा से उस बछड़े को साफ करती है उसके शरीर से जो कुछ मलमूत्र निकला हुआ उस बछड़े के शरीर के ऊपर है गाय गौ माता अपनी जिह्वा से उसे चाट कर पहुंचती है। यह है प्रेम गाय का अपने बछड़े की तरफ और कहा गया है कि यदि सैकड़ों बछड़ों में किसी गाय का बछड़ा खो जाए, कहां पर? सैकड़ों बछड़ों में यदि किसी गाय का बछड़ा खो जाए तो गाय अपने बछड़े को सैकड़ों बछड़ों में से पहचान लेती है। हम इसका उदाहरण दे रहे थे कि चीन में, चाइना में इतने बच्चे पैदा होते हैं रोज, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है चाइना, तो इतने बच्चे पैदा होते हैं वहां पर एक मैटरनिटी रूम या मैटरनिटी होम ऐसा है जहां पर सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं दिन में। तो वहां के उस मैटरनिटी होम का नियम है कि मां को और जो नवजात शिशु है उसको नंबर दिया जाता है, तो बेड नंबर एक, माता नंबर एक, शिशु नंबर एक, क्योंकि इतने सारे एक साथ पैदा होते हैं तो सबको नंबर दिया जाता है। तो देखा गया है कि, और वो भी चीनी बच्चे, उन्हें पहचानना हो तो बड़े होने के बाद भी कोई पहचान नहीं पाता उन्हें, तो उस देश के तो सब एक जैसे दिखते हैं। तो ये जो ये बच्चों की माता तो बेहोश रहती है जब बच्चा पैदा होता है, तो नंबर दिया जाता है, भाई बेड नंबर दो, माता नंबर दो, शिशु नंबर दो। तो जब वो माता जाती है, सभी बच्चों को लेटाया गया है पालने में और सबका नंबर लिखा गया है, जब तक उस माता को अपने बच्चे का नंबर नहीं दिया जाता, सब बच्चे एक समान दिखते हैं। कोई माता अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती कि इसे मैंने ही जन्मा है। तो खड़ा देख रही है कि इनमें से कौन सा है वो मेरा लाल, वो मेरे दिल का टुकड़ा, कौन है वो? और जब आकर वो वहां की नर्स आकर बताती है, तुम्हारा बच्चा नंबर दो। मेरा बच्चा, ये दो नंबर मेरा बच्चा। और फिर ऐसा प्रेम उमड़ जाता है किसके प्रति? दो नंबर बच्चे के प्रति। तब तक सारे बच्चे एक समान, किसी के प्रति प्रेम नहीं। परंतु गाय के विषय में कहा गया है कि गाय के अंदर ऐसा गुण है कि सैकड़ों बछड़ों में यदि उसका बछड़ा कहीं पर है तो गाय पहचान लेती है अपने बछड़े को बिना नंबर बताए। इसलिए ये जो गुण है वत्स या बछड़े का और गाय का जो संबंध है, ये संबंध बताया गया है भगवान और भगवान के भक्त में। तो जैसे बछड़े की रक्षा करने हेतु गाय अपना प्राण त्याग देती है कई बार, उसी प्रकार भगवान अपना सब कुछ त्याग देते हैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु। परंतु भक्त को भी उस प्रकार का शुद्ध भक्त होना पड़ेगा। उस बछड़े के समान जब बछड़ा पुकारता है अपनी माँ को, गौ माता को जब पुकारता है बछड़ा, तो कितने करुण भाव से पुकारता है वो बछड़ा। इसलिए द्रौपदी ने जब पुकारा, कब पुकारा द्रौपदी ने? जब वस्त्र हरण लीला हो रही थी, लीला नहीं दुशासन, वो कुकर्म में लगा हुआ। तो ये कथा ध्यान से सुनिए, हम सब के लिए बहुत लागू है द्रौपदी की ये कथा, कि द्रौपदी को दांव पर लगाया गया था। वो द्रौपदी जो कि यज्ञ से निकली हुई द्रुपद पुत्री पांचाली, वो सती स्त्री, उस द्रौपदी को दुशासन ने केश से पकड़कर खींचते हुए दुशासन लेकर आया, वो भी भरी सभा में। हालांकि उस सभा को कहा गया है असत सभा। उस भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन खींच कर लाया केश पकड़कर। तो उस समय भगवान द्वारका में थे, रुक्मिणी के साथ बैठे भगवान चौसर खेल रहे थे, और यहां पर द्रौपदी को केश से पकड़कर लाया गया है। और इतना ही नहीं, दुर्योधन कर्ण इत्यादि क्या आदेश दिया उन्होंने दुशासन को, निर्वस्त्र करो इस द्रौपदी को, ये आदेश दिया। और दुशासन के बाहुओं में कितना बल था, 10,000 हाथियों का बल। ये बलशाली दुशासन अपने भुजाओं से द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति होगी द्रौपदी की। कलयुग में भी ये कुछ नहीं देखा जा रहा। हालांकि कलयुग में दुशासन को आने की जरूरत ही नहीं है आजकल, बिना दुशासन को आए ही क्या कहें अब। तो दुशासन अब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा, तो द्रौपदी वो युधिष्ठिर अर्जुन भीम इनकी तरफ अपना मुख किए कि अरे अरे तुम लोग मेरे पति हो, मुझे दांव पर लगाया और यहां पर ये मेरी स्थिति है, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं करोगे तुम लोग। तो रुक्मिणी को ये संकेत हो गया कि द्रौपदी स्थिति में है। तो रुक्मिणी भगवान से कहती है आप अंतर्यामी हैं, आप जानते नहीं वहां पर हस्तिनापुर में क्या हो रहा है, आप यहां पर चौसर खेल रहे हो मेरे साथ, जाकर रक्षा क्यों नहीं करते। तो भगवान ने कुछ नहीं कहा, खेलो एक और खेल। तो रुक्मिणी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। यहां पर द्रौपदी भीष्म पितामह की तरफ जा रही, उनकी तरफ मुख कर पितामह क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करोगे, विदुर जी क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करोगे, क्या यहां पर कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकेगा। रुक्मिणी और दुशासन खींचे जा रहा है, साड़ी खींचे जा रहा है। रुक्मिणी भगवान को याद दिला रही है इतने निर्दयी मत बनो, बेचारी द्रौपदी कुछ तो सोचो। भगवान ने क्या कहा, एक और खेल लगाओ। द्रौपदी ने जब देखा पांडव भीष्म पितामह विदुर जी कोई भी सामने आकर द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पा रहे, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ना शुरू किया, अपने दोनों हाथों से। परंतु द्रौपदी वो एक अबला स्त्री, यहां दुशासन जिसके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल, इसके सामने द्रौपदी का बल क्या काम करता। द्रौपदी अपने कोमल से हाथों से जितनी ताकत थी अपनी साड़ी को पकड़ रही थी, दुशासन खींचे चले जा रहा था। रुक्मिणी भगवान को याद दिला, अरे द्रौपदी अब अपने दोनों हाथों से प्रयास कर रही फिर भी नहीं वो अपने आप की रक्षा कर पा रही। भगवान ने रुक्मिणी से कहा एक और खेल लगाओ। द्रौपदी अंत में अपने दोनों हाथों से हार मान गई। अंत में द्रौपदी ने किया क्या, अपने दांतों में अपनी साड़ी को पकड़ना चाहा। रुक्मिणी कहती है, बस मुझसे सहन नहीं होता, द्रौपदी अपने दांतों में अपने साड़ी का अंतिम भाग पकड़े है। भगवान ने क्या कहा, एक और खेल लगाओ। कैसी परीक्षा है ये, क्या ये भक्त वत्सल है, क्या ये करुणा सिंधु है, कैसी परीक्षा है ये। जब दुशासन ने वो भी खींच लिया, द्रौपदी के दांतों में द्रौपदी की अटकी हुई साड़ी को भी जब दुशासन ने खींच लिया, तब द्रौपदी वो अब कुछ नहीं कर पा रही। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और द्रौपदी ने क्या कहा, हे गोविंद, हे गोपाल, बोलिए। द्रौपदी अपने दोनों हाथों को ऊपर कर पूर्ण शरणागति में रोने लगी। जब वो रोने लगी, रुक्मिणी ने जब ऊपर देखा भगवान को डांटने के लिए, अब तो रुक्मिणी ने देखा कि भगवान नहीं थे, भगवान गायब हो गए। एक ही क्षण में, आधे क्षण में भगवान वहां से गायब, अंतर्धान हो गए। और भगवान किस रूप में प्रकट हुए, द्रौपदी की साड़ी के रूप में। तो रुक्मिणी ने भगवान से पूछा कि आपको यदि जाना ही था तो आपने इतनी देरी क्यों की, यदि रक्षा करनी ही थी साड़ी बनकर तो इतनी देरी से रक्षा क्यों की। आप सुनना चाहते हैं भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि मैं जाना चाहता था परंतु द्रौपदी मेरी तरफ अपना मुख नहीं की थी, मैं जाना चाहता था परंतु द्रौपदी पांडवों की तरफ देख रही थी, मैं जाना चाहता था परंतु द्रौपदी भीष्म पिता की तरफ देख रही थी, सोच रही थी वो रक्षा करेंगे, मुझे नहीं पुकार रही थी द्रौपदी। मैं जाना चाहता था परंतु द्रौपदी, विदुर जी, अपने स्वयं के हाथों के ऊपर उसे विश्वास था। मैं जाना चाहता था परंतु द्रौपदी अपने दांतों के ऊपर विश्वास रखी थी। मैं जाना चाहता था तब तक मैं नहीं गया क्योंकि मुझे कोई पथ नहीं मिला चलने के लिए। भगवान कौन से पथ पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जलते हैं, अश्रु पथ। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब द्रौपदी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होंगे तो वो अश्रु पथ के ऊपर मैं चलकर द्रौपदी की रक्षा कर सकूंगा। भगवान उस अश्रु पथ की खोज में थे, इसलिए द्रौपदी ने उस समय जान लिया, द्रौपदी ने उस समय जान लिया कि मेरे एकमात्र रक्षक हैं श्री गोविंद, मेरे प्राणेश्वर, ये मेरे एकमात्र रक्षक हैं। और हमें द्रौपदी ने क्या सिखाया कि हम भी द्रौपदी की तरह ही द्रौपदी की स्थिति में हैं, भगवान को छोड़े हुए और दुशासन जो माया के रूप में, ये माया देवी हम सबका बलात्कार कर रही है, हम सबको ये माया देवी निर्वस्त्र कर रही है, परंतु हम भाग रहे हैं इन भौतिक संसार की जो चीजें हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, इनके पीछे अपने रक्षा हेतु। इसलिए इसलिए कहा गया है कि जब तक हम द्रौपदी के मनोभाव को नहीं लेंगे अपने अंदर भगवान का नाम लेते हुए, तब तक भगवान हमारी रक्षा करने हेतु नहीं आएंगे, क्योंकि हम बुला ही नहीं रहे तो क्यों वो आए। इसलिए द्रौपदी का मनोभाव क्या था,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है।
सब बोलिए
गोपाल मेरो है,
बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बोलो नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, मेरो नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना, मेरो नंदलाल तरस रहे नैना, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
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 बोलो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। द्रौपदी समझ गई नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। तो यहां पर सारे गोपगण, सारे गोपगण भागते हुए भगवान श्री कृष्ण की तरफ गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुं अर्हसि देवाना कुपिताद भक्तवत्सल। कि आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हो। तो भगवान को जब इस प्रकार से उन्होंने पुकारा तो भगवान बाहर निकले और भगवान ने देखा, वो मुस्कुराए। स्थिति क्या थी? बाढ़, चारों तरफ बाढ़, तूफान, तेज हवाएं। भगवान मुस्कुरा रहे क्योंकि वो जानते थे कि अब वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है जब मैं श्री गोवर्धन को धारण करूंगा। तो भगवान ने सभी गोपगणों को कहा, चिंता मत करो। और भगवान निकल पड़े, नंद भवन से निकल पड़े गोवर्धन की ओर। तो भगवान जब निकल रहे थे गोवर्धन की ओर, चारों तरफ वर्षा, बाढ़। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान चलकर कैसे जा रहे थे, इतनी बाढ़ हो रही है, एक एक बूंद यदि खंबे के समान है। तो योग माया, भगवान की अलग अलग शक्तियों ने भगवान के ऊपर एक छत्र की छाया रख दी कि भगवान नंद भवन से गोवर्धन की ओर जब चलने निकले तो संवर तक बादलों में से जो वर्षा आ रही थी, बाढ़ आ रही थी, उसकी एक भी बूंद भगवान के ऊपर नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि भगवान अब 7 दिन और 7 रात गोवर्धन के नीचे लीला करने वाले हैं। तो सभी शक्तियों ने भगवान को सूखा रखा ताकि सर्दी न हो जाए। और सभी गोपगण वो भगवान के पीछे पीछे, भगवान जहां जा रहे हैं पीछे पीछे, किसी ने नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि सब ब्रजवासी गण अपने घरों से छतरी लेकर आए थे, अरे इतनी वर्षा हो रही छतरी लाकर भगवान को कह रहे हैं कुछ करो। नहीं, उनके जीवन में केवल एक ही छत्र छाया और वो है श्री गिरिधारी। तो भगवान चलते हुए सभी ब्रजवासीगण भगवान के पीछे पीछे गोवर्धन के निकट पहुंचे भगवान। और भगवान ने सबको कहा कि जिनकी पूजा हमने की है वही अब हमारे रक्षा हेतु आएंगे। और भगवान ने अपने बाएं हाथ से श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोलो गिरिराज महाराज की। और इतना ही नहीं, छोटी सी उंगली में भगवान ने श्री गिरिराज महाराज को उठाया। और सभी गोपगण जब भगवान गिरिराज जी को उठा रहे थे तो इतनी भयंकर आवाज हो रही थी गिरिराज जी के उठने की कि बड़े बड़े स्वर्ग लोक के बड़े बड़े देवता जो अपनी पार्टियों में थे, सोमरथ की पार्टियां चल रही थी, अचानक इस आवाज को सुनने से उनकी पार्टी के रंग में भंग हो गया। और जैसे भगवान अब गोवर्धन को ऊपर उठा रहे थे जैसे गोवर्धन और ऊपर उठ रहे थे। एक तो गोवर्धन पहले से ही इतना विशाल थे, इसके ऊपर भगवान के हस्तों का स्पर्श हो रहा है। तो अब गोवर्धन के अंदर जो वर्धन हो रहा था कोई सीमा नहीं। कहा गया है कि सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत इसकी चोटी सबसे ऊंची है। तो सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत, ये एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये तीसरा पर्वत कौन आ रहा है, हमसे ऊपर जा रहा है। गोवर्धन इन सभी पर्वतों के ऊपर चले गए और कौन ले जा रहे थे गोवर्धन को? भगवान श्री गिरिधारी 7 वर्ष के, और भगवान का बायां हाथ, केवल बायां हाथ नहीं, बायां हाथ की छोटी सी ये उंगली। देखो भगवान जब इस उंगली को ऊपर करते हैं तो एक गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी स्थिति है। पकड़ो इन तथाकथित भगवानों को जो कलयुग में मंडरा रहे हैं और पूछो कि कब ये उंगली ऊपर करते हो तुम, समझ में आ जाएगा। तो भगवान गोवर्धन को, और किसी पर्वत को इतने काल बाद, पहले तो पर्वत को कौन हिला सकता है, मानो किसी पर्वत को अनंत काल बाद हिला भी दिया जाए तो नीचे क्या क्या मिलेगा पर्वत के नीचे। कोई पत्थर को कोई हटाता है बहुत समय बाद तो पत्थर के नीचे कीड़े, ये जीवाणु कीटाणु ये सब निकलते, परंतु जब गोवर्धन को भगवान ने उठाया तो गोवर्धन के नीचे से क्या निकला? गोवर्धन के नीचे एक बहुत सुंदर नगरी थी, गोवर्धन के नीचे बहुत ही पवित्र सरोवर, बड़े बड़े उद्यान, उनमें बहुत ही सुसंगत और सुस्वादु फूल और बड़े बड़े महल गोवर्धन के नीचे। किसके लिए? ये सभी गोपगण, ब्रजवासी गण के लिए, जो कि 7 दिन और 7 रात अब गोवर्धन के नीचे अपना समय बिताने वाले हैं। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है अपनी तर्क बुद्धि को लगाकर कि जब भगवान ने गोवर्धन को ऊपर उठाया तो इतनी बाढ़ हो रही थी, कहा गया है इतनी बाढ़ हो रही थी, तो वो बाढ़ का पानी नीचे क्यों नहीं आया, है कि नहीं? जैसे ही भगवान ने गोवर्धन को ऊपर उठाया तो गोवर्धन के ऊपर से ब्रजरज, बड़े बड़े माटी, माटी के लोथड़े नीचे गिरने लगे और उन्होंने तुरंत गोवर्धन के चारों तरफ एक कंपाउंड वॉल, जिसे कहते हैं एक कंपाउंड वॉल बांध दिया, ताकि इंद्र द्वारा भेजे गए संवर्तक बादलों की वर्षा का एक बूंद भी अंदर ना आ सके। तो सभी ब्रजवासीगण अपनी आंखों के सामने इस अजूबे को देख रहे हैं, इस आश्चर्य को देख रहे हैं, इस अद्भुत पराक्रम को देख रहे हैं। तो भगवान उठाए हुए अकेले थे पहले, और सभी देखकर बहुत चक्का रह गए, क्या यही हमारा कृष्ण है? नंद महाराज, यशोदा माई, क्या यही मेरा कन्हैया है? क्या इसी ने इतने बड़े पर्वत को उठाया? उस समय भगवान सभी ब्रजवासी गण को, विशेष रूप से नंद महाराज को भगवान ने कहा, अब निश्चिंत होकर, निडर होकर, अभय होकर तुम सब गोवर्धन के नीचे आओ। अब ये गोवर्धन तुम्हें आश्रय देगा। तो यहां पर ब्रजवासी गण, इनकी दृढ़ निश्चय या दृढ़ श्रद्धा भगवान पर इतनी कि जैसे भगवान ने कहा सभी नीचे गोवर्धन के आ जाओ, तुरंत सभी आ गए। ऐसा नहीं कि सभी एक दूसरे से चर्चा करें, अरे जाएं कि नहीं, तो नीचे बुला रहे हैं, पर्वत इतना बड़ा वो भी छोटी सी उंगली पर। ऐसा नहीं कि नंद महाराज कह रहे थे पहले तुम जाओ देखते हैं, सभी इतना दृढ़ विश्वास सभियों के अंदर भगवान के वाक्यों पर, तुरंत सभी नीचे गए। तो तीन जगह पर हम देखते हैं ब्रजवासी गण, उन्होंने अपनी दृढ़ निष्ठा दिखाई भगवान के वाक्यों के ऊपर कि जब भगवान ने इंद्र यज्ञ रोकने के लिए कहा तुरंत रोक दिया, गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा तुरंत कर दी, संवर्तक बादलों ने बाढ़ की तुरंत भगवान के पास गए रक्षा हेतु। यहां पर भगवान नीचे बुला रहे हैं, बिना सोचे बिना संशय के तुरंत चले गए। और कहा गया है कि 7 दिन और 7 रात क्या क्या लीलाएं हुई, यदि उसे प्रारंभ करेंगे तो फिर हम बहुत सीमित हैं। तो भगवान अब 7 दिन और 7 रात लीला कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत के नीचे, और इंद्र वहां पर देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, मैंने बहुत बड़ी भूल की। तो गोवर्धन लीला में 8 आश्चर्यजनक मुद्दे ये बताए गए हैं। कौन से हैं ये 8 आश्चर्यजनक मुद्दे? सबसे पहले, एक 7 वर्षीय बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ रोक दिया। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि इतने बड़े इंद्र यज्ञ को रोक दिया केवल एक 7 वर्षीय बालक के कहने पर? ये सबसे बड़ा आश्चर्य ये गोवर्धन लीला में हम देखते हैं। इतना ही नहीं, उसके बदले एक पर्वत की पूजा की, तो मानो इंद्रदेव को और चिढ़ाने के लिए। ये दूसरा आश्चर्य, अरे भाई रोका तो ठीक, यदि रोकने के पश्चात यदि और कुछ नहीं किया होता, किया क्या भगवान ने, किया क्या कि इंद्र यज्ञ के लिए जितनी सामग्री इकट्ठा की थी नंद और यशोदा ने, कहा कि ये सब सामग्री गोवर्धन पूजा में लगाओ। तो एक साथ दो दो तमाचा, ये दूसरा आश्चर्य, ये बहुत बड़ा आश्चर्य कि इंद्र जैसे महान देवता भी भगवान के ऊपर क्रोधित हुए, भगवान को पहचान नहीं पाए कि वो किससे खेल रहे हैं। इंद्र सोच नहीं पाए कि वो आग से खेल रहे हैं। चौथा आश्चर्य, वृंदावन को विध्वंस करने हेतु तो इंद्र ने संवर्तक बादलों को भेजा। अरे भाई, इतने बड़े बड़े बादलों को भेजने की क्या आवश्यकता थी, केवल 84 कोस का ब्रजमंडल उसे विध्वंस करने के लिए संवर्तक बादलों को भेज। ये चौथा आश्चर्य, ब्रजवासी गण अपने रक्षा हेतु 7 वर्षीय बालक के पास दौड़े। ये भी आश्चर्य कि वो इंद्र का यज्ञ शुरू नहीं किए, भगवान के पास फिर से दौड़े रक्षा हेतु। छठा आश्चर्य, भगवान के गोवर्धन के रास्ते तक वर्षा का एक बूंद भगवान के ऊपर नहीं। ये छठा आश्चर्य, गोवर्धन को भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर 7 दिन और 7 रात उठाए रखा। ये तो सबसे बड़ा अजूबा है। तो ये 7वां आश्चर्य। 8वां आश्चर्य, भगवान कृष्ण के एक बार बुलाने पर, केवल एक बार बुलाने पर सभी ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए, बिल्कुल संशय नहीं किया। ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस गोवर्धन लीला से क्या क्या शिक्षाएं हमको दी हैं, कैसे ब्रजवासियों की तरह हमें एकनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में लगना है, कैसे हमें हमारा दृढ़ विश्वास केवल भगवान श्री कृष्ण के ही चरणों में समर्पित करना है, क्योंकि वही है हमारे आश्रय स्थान। ये भगवान ने अपनी इस गोवर्धन लीला से हमें सिखाया। और कैसे जब अहंकार वश इंद्र जैसे अपने आप को इतना बड़ा दिग्गज मानते हैं, परंतु किसके बलबूते पर हैं? इनके बलबूते पर। तो कैसे भगवान इन्हें सबक सिखाते हैं, ये भगवान ने गोवर्धन लीला से। और इसलिए इंद्र, यहां पर देखो, इंद्र जब वो जान गए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, तो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे भगवान के सामने, तो इंद्र सुरभि गाय को, यहां पर आप देखो सुरभि गाय पीछे है, पहले सुरभि गाय, क्योंकि इंद्र जानते थे कि ये गोपाल हैं, ये गौओं से बहुत प्रेम करते हैं, तो सुरभि गाय को आगे किया, और सुरभि गाय को आगे कर फिर भगवान इंद्रदेव जो है भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, और फिर ऐरावत को कहा कि भगवान का अभिषेक करो। तो जैसे ऐरावत ने गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान का अभिषेक किया, वैसे ही आज हम इस गोवर्धन लीला को श्रवण करने के पश्चात इन गिरिधारी का अभिषेक करेंगे, बहुत ही सुंदर पुष्पों से। परंतु आप दिल थाम कर बैठिए। तो जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, और जैसे भगवान ने अपने गोवर्धन के नीचे सारे गोप समुदाय को आश्रय दिया, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी होते हैं। भगवान के भक्त भी, कहा गया है कि भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा कृपालु होते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बरसाते हुए गोवर्धन के नीचे उन्होंने सारे गोप सखाओं को आश्रय दिया, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो इस कलयुग में अवतीर्ण हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु। और श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व, सारे सृष्टि, विशेष रूप से हम जो कलयुग में हैं, हमारा उद्धार करने हेतु वो नाम के रूप में अवतरित हुए। भगवान अपने अलग अलग अवतारों में भगवान आए, उन्होंने लीला की और भगवान चले गए। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो अवतरित हुए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो वो उन्होंने लीला की, परंतु वो गए नहीं, वो अब भी हैं हमारे साथ। किस रूप में? उनके नाम के रूप में है भगवान। भगवान हालांकि युग अवतार बनकर आए, परंतु हमें ऐसा युग धर्म देकर चले गए, चले नहीं गए, हमारे साथ अब भी हैं। भगवान नाम के रूप में, इसलिए उन्हें कहा गया है नाम अवतार। अपने नाम के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना है। अपने उदाहरण से भगवत गीता तो उन्होंने सुनाई अर्जुन को, परंतु वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया कि उस भगवत गीता का पालन अपने जीवन में हम कैसे करें। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीला वृंदावन में की, वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने अपनी मधुर लीला श्री नवद्वीप धाम से शुरू की। पश्चिम बंगाल में है श्री नवद्वीप धाम मायापुर, और वहां से उन्होंने ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये भगवान श्री कृष्ण की रास लीला से अभिन्न है। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पूरे भारतवर्ष इस हरिनाम को फैलाया, इस हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद इन्होंने भारत की सीमाओं के बाहर इस हरे कृष्ण महामंत्र को सारे विश्व में फैलाया। और इसलिए हम जो आज जो 7 दिन तक हम यहां पर एकत्रित हुए, भगवान की कथामृत का पान हमने किया, किसकी कृपा से? इन श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और श्रील प्रभुपाद इतने शुद्ध कि बचपन से उन्होंने सभी वैष्णव सिद्धांतों का पालन किया, और वो जब अपने गुरु से मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान थे, वो बंगाल के कलकत्ता में पैदा हुए थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके गुरु ने इन्हें आदेश दिया कि तुम भगवत गीता और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में फैलाओ। तो वो श्रील प्रभुपाद वो कौन सी उम्र में भारत को छोड़कर अमेरिका के देश में गए इस हरिनाम को फैलाने के लिए? जब वो 70 वर्ष के थे। सोचिए 70 वर्ष के कोई व्यक्ति, वो अब अपना सब कुछ रिटायरमेंट लेकर आराम कोई तीर्थ स्थान में जाकर रहना चाहते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने उस उम्र में भारत को छोड़ा। वो वृंदावन में निवास कर रहे थे, वृंदावन जैसे महातीर्थ को छोड़कर वो गए कहां पर? पाश्चात्य देश अमेरिका। और वहां पर श्रील प्रभुपाद ने इस हरिनाम आंदोलन की क्रांति फैलाई। किसके बीच? कोई सुशिक्षित नागरिक नहीं थे वहां के, वो उन्हें उस समय हिप्पी कहा जाता था। तो इन्हें श्रील प्रभुपाद हरिनाम में लगाए, अकेले श्रील प्रभुपाद, कोई नहीं इनके साथ, न इनका परिवार का कोई सदस्य, कोई भारतीय इनके साथ इनकी सहायता के लिए नहीं गया, अकेले श्रील प्रभुपाद जी इनके साथ। कौन थे? लेकिन इनके साथ थे स्वयं भगवान, और भगवान की एक निष्ठ भक्ति ये श्रील प्रभुपाद जी के साथ थी। तो श्रील प्रभुपाद जी अकेले इन हिप्पियों के साथ इनके मध्य में बैठे हरिनाम इन्हें सिखा रहे थे। ये हिप्पी जो बचपन से सभी धर्मों के नियम को तोड़ते आ रहे थे, इन्हें श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का ये शुद्ध हरिनाम दिया। श्रील प्रभुपाद देश विदेश की यात्रा उन्होंने की, 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रचार हेतु, प्रचार हेतु। ये चित्र है, हम इस जगह पर गए थे रशिया में, उस समय जहां पर ये कम्युनिस्ट का राज्य था, श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम का प्रचार उस समय किया। बड़े बड़े विद्वानों को भगवान के अस्तित्व के बारे में बताया श्रील प्रभुपाद ने। इतना ही नहीं, रात रात भर जागकर श्रील प्रभुपाद ने ऐसे दिव्य ग्रंथों का अनुवाद किया, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, रात रात भर जागकर श्रील प्रभुपाद जी इनका अनुवाद किया करते। किसके लिए? हम सब के लिए। ये सारे ग्रंथों को हमारे लिए दिया, ताकि इस कलयुग में 10,000 और इससे भी ज्यादा वर्षों तक हम सब इसका लाभ ले सकें। श्रील प्रभुपाद जी ने भव्य भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की स्थापना की, न केवल उस पाश्चात्य देश में बल्कि भारत में आकर जो असली भक्ति भावना जहां पर शुरू होती है, ऐसे मंदिरों की स्थापना की। और श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही विशेष योगदान श्रील प्रभुपाद जी का रहा, ये जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो एक समय केवल जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने सारे विश्व में श्री जगन्नाथ जी की कृपा रथ यात्रा के रूप में उन्होंने बरसाई। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को लगाया कि केवल तुम भजनानंदी मत बनो, केवल तुम भजन अपने स्वयं के लिए मत करो, बाहर जाओ और दूसरों को ये हरिनाम दो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को भेजा, जैसे चैतन्य महाप्रभु सबके लिए नगर संकीर्तन किया करते थे, तो रास्तों में ये ऐसे ऐसे शहरों में जहां पर हर प्रकार के गलत कार्य हो रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जाकर सबको हरिनाम दिया करते थे, अब भी देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर अर्चक विग्रहों की स्थापना की इन भव्य मंदिरों में, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ताकि हम हमारी हरेक इंद्रिय को, हमने 5 इंद्रियों की चर्चा की, हरेक इंद्रिय को हम इन भगवान की सेवा में लगाएं, आंखों को इनके सुंदर रूप को देखने में, हमारी जिह्वा को इनके नाम उच्चारण करने में, हमारे हाथों को इनकी ही सेवा करने में, पैरों को इनके मंदिर तक चलने में, हमारी हरेक इंद्रिय को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, श्री प्रभुपाद जी ने सुंदर अर्चा विग्रहों को दिया। और अंततः ये रहा श्री प्रभुपाद जी का योगदान कि श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा गोवर्धन धारण कर हमें दिया, ये हरिनाम, कि ये हरिनाम के आश्रय में यदि हम आ जाएं, तो ये जो संवर्तक बादलों की जो वर्षा है, ये जो विपदाओं की वर्षा है इस कलयुग में, इन सब से हम बच पाएंगे। इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहा गया है कि उन्होंने एक ऐसा घर बनाया, उन्होंने एक ऐसा घर बनाया इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा, कि जिसके अंदर सभी, पूरा मनुष्य समाज, सभी योनियां भी इसमें समाविष्ट हो जाएं और आश्रय ग्रहण करें। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो सभी को उसका आश्रय दिया। इसलिए हम अपनी कथा के इस अंत में श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आप सभी के चरणों में विनम्र भाव से यही प्रार्थना करने चाहेंगे कि यदि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, तो हमें जो ये एक भारतीय ने किया श्रील प्रभुपाद, हमारी असली संस्कृति को न केवल हमें सिखाया बल्कि सारे विश्व को। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम इसे अपना लें अपने जीवन में। यदि कोई हमें अमृत लाकर दे रहा है और गिड़गिड़ाकर कह रहा है कि कृपया इस अमृत को आप लीजिए, तो क्या हम नहीं लेंगे? इसलिए कहा गया है, निश्वासे नहीं विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति कीर्तन मतो बाल्या हरे नाम एव केवलम हरे नाम एव केवलम हरे नाम एव केवलम हरे नाम एव केवलम हरे नाम एव केवलम। केवल ये हरि नाम ही एकमात्र उपाय है हमारे उद्धार का। एक अंतिम कहानी आपको मैं कहना चाहूंगा इस हरि नाम के संदर्भ में, ध्यान से सुनिए, तत्पश्चात हम पुष्प अभिषेक शुरू करेंगे। एक गांव में पिता और पुत्र वो रास्ते चल रहे थे, तो रास्ते पर से आगे से शव यात्रा जा रही थी। कौन सी यात्रा? शव यात्रा। और शव यात्रा कैसे निकलती है? चार कंधों पर उस शव को, उस तिरड़ी पर, उस तिरड़ी पर सुलाया जाता है और चार कंधों पर उस शव को ले जाया जाता है। कहां पर? स्मशान भूमि। तो शव यात्रा निकल रही थी, और शव यात्रा में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो ये पिता और इस पिता के पुत्र ये वहां से गुजर रहे थे, तो पुत्र ने पिता से पूछा। पुत्र पिता से पूछता है, पिताजी पिताजी ये क्या हो रहा है? पिताजी ने कहा, बेटा इसे शव यात्रा कहते हैं। तो पुत्र पूछता है, ये चार लोग मुंह से क्या बोल रहे हैं पिताजी? तो पिताजी ने कहा, बेटा वो राम का नाम ले रहे हैं। किसका नाम? राम का नाम ले रहे हैं बेटा वो। तो बेटा पूछता है, पिताजी वो जो ऊपर लेटा है वो नहीं ले रहा? बेटा पूछता है, पिताजी जो ऊपर लेटा है वो नहीं ले रहा, बाकी लोग ले रहे हैं, ऊपर लेटा वो क्यों नहीं बोलता? तो पिताजी ने कहा, बेटा वो मर चुका है। बेटा वो मर चुका है। मरा हुआ व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता। तो बेटा पिताजी की तरफ देखता है, और बेटा देखो अपना तर्क लगाता है, मासूम सा बालक है, उसका तर्क देखो। तो बेटा पिताजी से पूछता है, पिताजी आपने कहा कि चारों नाम ले रहे हैं परंतु वो जो ऊपर लेटा वो नहीं ले रहा क्योंकि वो मरा हुआ है, मरा हुआ व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो भगवान का नाम नहीं ले रहा और पिताजी नहीं ले रहे थे। तो पिताजी ने तुरंत बेटे को पकड़ा और पीछे खड़े हो गए शव यात्रा के, वो भी शुरू हो गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए कहा गया है, बचपन बीता खेल खेल में भर जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्यों सोचे, क्या पाया क्या खोया, देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम,
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 राधे श्याम राधे श्याम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम,
राधे श्याम राधे श्याम,
सीता राम सीता राम,
सीता राम सीता राम,
बोलो सीता राम सीता राम, बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम,
राधे श्याम बोलो सीताराम,
बोलो राधे श्याम बोलो सीताराम,
राधे श्याम बोलो सीताराम।
कहा गया है बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, कुछ याद आ रहा है, किस्सा वही पुराना है। तो प्रतीक्षा नहीं करनी हमें, किसकी? शव यात्रा की। ध्यान में रहे, हम सब की एक न एक दिन शव यात्रा निकलने वाली है, कोई संशय है? बहुत देरी हो जाएगी तब मुंह से राम का नाम नहीं निकल पाएगा, ऊपर लेटा हुआ शव भगवान श्री राम का नाम नहीं ले पाएगा। इसलिए इसलिए जब तक ये श्वास चल रही है, क्या कहा गया है, निश्वासे नहीं विश्वासो, ये जो हमारी श्वास चल रही है ये कब निश्वास में परिवर्तित हो जाए इसका कोई विश्वास नहीं। इसलिए ये श्वास निश्वास में परिवर्तित होने से पहले हमें भगवान श्री हरि का नाम अपने जीवन में अपना लेना है। तो यही मेरा नम्र निवेदन आप सभियों से, यही मेरा नम्र निवेदन कि श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर यही गुरु दक्षिणा हम मांग रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस हरि नाम को अपनाएं। जैसे ब्रजवासीगण उन्होंने श्री गोवर्धन का आश्रय लिया, श्री गिरिधारी का आश्रय लिया, इस कलयुग में यही हमारे आश्रय स्थान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो श्री गिरिराज महाराज की, बोलो श्री गोवर्धन धारण लीला की, बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, नितई गौर प्रेम। कृष्णा, और मैं आप सबका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आप सभी, जिनके वजह से ये भागवत कथा सुखरूप और सफलता से हम संपन्न कर पाए। ये एक उदाहरण मैं दे रहा था कि जैसे गाय दूध देती है जब वो बछड़े को देखती है, तो बछड़े के प्रेम के वजह से गाय के अंदर दूध उमड़ता है। तो मैं आप सबके चरणों में धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके वजह से इस अधम के मुख से भी कुछ निकल पाया। तो यदि मेरी एक प्रार्थना आप सुनना चाहोगे तो आप कृपया आपका आशीर्वाद, आपका आशीष और आपकी प्रार्थनाओं में इस अधम जीव को रखें, ताकि आपके सानिध्य से इस जीव का भी कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
श्रीमान शिक्षा संगम प्रभु की।